राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 जून 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 एक इच्छा होती है एक आवश्यकता होती है, ये दो भेद है इसमें। इच्छा की निवृत्ति होती है, पूर्ति कभी नहीं होती। आवश्यकता की पूर्ति होती है, निवृत्ति कभी नहीं होती। जैसे दृष्टांत के लिए भूख लगती है तो उस समय खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। भूख है ना, पेट में कमी आई है, उस कमी की पूर्ति के लिए जो आवश्यक चीज होती है वो आवश्यकता कर देती है, इसके लिए आवश्यकता है। तो आवश्यकता जितनी भूख है उतना खाद्य पदार्थ मिल जाएगा तो उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। परंतु इच्छा होती है अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज या चटोरपन से उसकी पूर्ति कभी नहीं होगी। जैसे मिलती चली जाएगी त्यों ही वो भूख अधिक से अधिक लगेगी। तो भूख नहीं है, वो इच्छा है, कामना है, ये है। तो जैसे पेट में एक भूख होती है, एक जीभ की चटोरपन की इच्छा होती है, ऐसे ही यह दृष्टांत में यह जीवात्मा है, प्रकृति और पुरुष दोनों का अंश है। तो परमात्मा का अंश है, उसको जो परमात्मा की इच्छा होती है ये इसकी आवश्यकता है। और भोगों की इच्छा होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय मान प्रतिष्ठा आराम, ये 8 चीजों की इच्छा होती है, ये आवश्यकता नहीं है। साधारण रीति से आदमी समझते हैं कि आवश्यकता होती है तभी इच्छा होती है, जरूरत होती है तभी तो इच्छा होती है, ऐसा कारण नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया अपने पास में हो जाए तो फिर भी ज्यादा कमाने की इच्छा होती है, वो कामना पूरी नहीं होती। करोड़ हो जाए, अरबों खरबों हो जाए तो भी नए नए कारखाने खोल के नई नई इच्छा होती और आ जाए और इच्छा। इच्छा की तो त्यागने से शांति होती है। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभू न भगेगी। तो ये संतोष में हो जाता है, इच्छा होती है उसका त्याग होता है। तो गीता में कामना का इच्छा का त्याग कहा है। तो त्यागा शांति अनंतरम, इसके त्याग से शांति अनंतर हो जाए तत्काल हो जाती है। तो इच्छा का त्याग करना है और इच्छा ही जन्म मरण का कारण है, आवश्यकता जन्म मरण का कारण नहीं है। ये जो भूख लगी अन्न खा लो, दाल भात खा लो, साग पूरी खा लो, हलवा लड्डू जलेबी खा लो, चाहे साग पत्ती करके पेट भर लो, तो पेट की भराई हो जाती, फिर बस तृप्ति होगी। तो शरीर तो नाशमान है, इस वास्ते इसकी आवश्यकता भी थोड़ी देर भूख दे, फिर भूख लग जाए। परंतु आत्मा है, इसलिए जो भूख है परमात्मा की, ये यज्ञ लब्ध हुआ चा परम लाभम, यही प्राप्ति होने पर यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं जास्ति पांडव, वो प्राप्ति होने पर फिर इच्छा वो रहती है नहीं, वो भूख है उसी तृप्ति हो जाती है, पूर्णता हो जाती है। इच्छा की पूर्णता कभी नहीं होती, इच्छा तो जन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई अधिक अधिक बढ़ती है। इन दोनों के भेद को समझ लेना चाहिए। आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप ध्यान दें बातों को। आवश्यकता है इस वास्ते एक बात बताऊं, मेरे तो बहुत वर्षों तक इन दोनों का भेद ये मालूम नहीं था। इस वास्ते आप इसकी उपेक्षा नहीं, बेपरवाह ना करें, ये ज्ञान नहीं होता है। मैं तो पढ़ गया, व्याख्यान देने लग गया, तो भी हमें पता नहीं लगा, पीछे संतों की कृपा से पता लगा, अपने आप नहीं, पुस्तकों से पता नहीं लगा, संतों से पता लगा। तो एक आवश्यकता होती है, इच्छा होती है, जीव जो मुक्ति की इच्छा होती है ये इसकी आवश्यकता है, भगवत प्रेम की इच्छा होती है ये आवश्यकता है, भगवत दर्शन की इच्छा होती है ये आवश्यकता है, इच्छा नहीं है ये। नाशवान की जो इच्छा होती है वो कामना है, तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की इच्छा होती है वो कामना है, वो इच्छा है, वो वासना है, वो आशा है, तृष्णा है, मांगना है, वो सब चल चीजों की नाशवान की होती है वो इच्छा होती है। तो नाशवान की इच्छा वो पूरी कभी नहीं होगी, और चाहिए और चाहिए, अब चाहिए कुछ नहीं है, कोई आफत ही आफत है, सिवाय आफत कुछ नहीं। इस वास्ते भगवान ने कामना के त्याग की बात कही है, और आवश्यकता की पूर्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर कोई इच्छा नहीं रहती, इच्छा निवृत्त हो जाती है, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, फिर न आवश्यकता रहती है न इच्छा रहती है, कुछ भी नहीं रहता। जड़ का संबंध जब तक रखते हैं तब तक इच्छा पैदा होती है। तो शरीर है ये प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति के पदार्थों की इच्छा कामना होती है, और स्वयं परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा की अभिलाषा होती है परमात्मा प्राप्त हो जाए। तो ये परमात्मा विषय की इच्छा है, ये कामना नहीं है, ये आवश्यकता है। इसको कामना कह दो तो नहीं कह दो कोई बात नहीं है, परंतु वो कामना वासना इच्छा आशा तृष्णा वासना ये नहीं है, ये उसकी आवश्यकता है। और बढ़ती क्या वो रहती है, कामना बढ़ती है, ये दो विभाग है, भोगे इच्छा संग्रह इच्छा ये कामना है, और प्रभु प्राप्ति की इच्छा तत्व ज्ञान की इच्छा उसको जिज्ञासा कहते हैं, प्रेम पिपासा कहते हैं, वो कामना नहीं है, उसकी पूर्ति होती है। ये दो विभाग समझने की आवश्यकता है। मेरे तो इस समझने से लाभ हुआ है, अब इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो, ये दो विभाग है। नहीं तो लोग कहते हैं कि इच्छा का त्याग, प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दो, इसका त्याग नहीं होता, वो इच्छा है ही नहीं, वो कामना नाम नहीं है, वो आवश्यकता है, वो जरूरत है, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, वो स्वयं की मांग है, स्वयं की भूख है, और इच्छा है ये इंद्रियों की अंतकरण की ये भूख है, वो स्वयं की नहीं है, वो इच्छा कामना वासना आशा तृष्णा याचना ये सब जड़ की है, नाशवान की है। तो नाशवान के अंश को लेकर के तो इच्छा होती है, परमात्मा के अंश को लेकर के आवश्यकता पैदा होती है। आवश्यकता पूर्ति होती है तो इच्छा मिट जाती है, और इच्छा मिट जाती है तो आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। दोनों में एक करोड़ गुण हो जाएगा, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी तो इच्छा स्वयं मिट जाएगी, और इच्छा मिट जाएगी तो आवश्यक परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा अप्राप्त है, नित्य प्राप्त है सबको ही, केवल संसार की इच्छा के कारण से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर भी अप्राप्ति दी हो रही है। वो सबको प्राप्त है, परमात्मा स्वतः प्राप्त है, संसार की इच्छा के कारण उसका भान नहीं होता। तो परमात्मा सबको प्राप्त है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में परमात्मा परिपूर्ण है। वो आप में भी है, हमारे में है, जल में, जड़ में, चेतन में, सावर में, जंगम में, सब जगह परमात्मा सदा सर्वदा विद्यमान है। उसकी पूर्ति उन्होंने उसका ख्याल होते ही पूर्ति हो जाती है। ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित, उसको जानने से उनमें स्थित हो जाता है। स्थित पहले से ही है, परंतु जब तक कामना है तब तक इच्छा अपनी पूर्ति है, अपनी जहाँ स्थिति है उसमें पूर्णता का अनुभव नहीं होता है। इस वास्ते कामना का त्याग करना चाहिए। कामना के त्याग के लिए बड़ा सुगम उपाय है कि दूसरों की इच्छा पूर्ति करना, अपने संबंध में, अपने जितने घर में संबंधी है उनकी इच्छा पूर्ति करो अपनी शक्ति के अनुसार। इच्छा पूर्ति कोई कर नहीं सकता, अपनी इच्छा के अनुसार उनकी सहायता करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करने से अपनी जो भोग की इच्छा है, सुख भोग है, संग्रह की इच्छा है, ये मिट जाएगी। दूसरों के सुख से हमारे को सुख मिल जाएगा, और अपने अगर ही सुख की इच्छा त्यागने से संग्रह की इच्छा मिट जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल हरदम होता रहे, किसी कोई कष्ट न हो, ये अगर भाव रखा जाए तो दूसरों का दुख अपना दुख हो जाता है। और अपना दुख दूर करने के लिए हरेक की चेष्टा होती है, तो दूसरों को दुख दूर करने की इच्छा स्वतः जागृत हो जाती है। एक बात हमने विदेश की सुनी है, किसी देश की बात सुनी है कि एक सभा थी, सब लोगों की सेवा करने के लिए एक सभा हुई थी, उसमें बड़े बड़े विचारक इकट्ठे हुए थे। तो वहां का सभापति था, वो आता था तो कुछ देर लग गई, तो विदेश में लोग समय के बड़े पक्के होते हैं, समय पर हाजिर हो जाते हैं, समय का ख्याल रखता है, ठीक समय पर काम करता है, तो वो समय पर विजय कर देता है, अर्थात मौत पर विजय हो जाती है। ये कालो दंड भ्रष्टा देवो वही वस्वतंत्र का, इस समय का नाम ही काल है, और वही काल जमराज है, वही मौत है। तो समय ठीक पालन करता है तो ये समय पर जीत हो जाती है, तो मुक्ति हो जाती है, मौत पर विजय हो जाती है। तो वे समय के पक्के होते हैं, समय पर हाजिर हो ही जाते हैं। तो सभापति के आने में थोड़ी देर हो गई, तो उन्हें अपने क्षमा मांगी कि मैं भाई देरी हो गई, आप लोग क्षमा करेंगे, माफी करेंगे। कहते देरी क्यों हो गई, तो बताया कि एक शहर के नाले में एक सूअर का बच्चा पड़ गया, तो पक्की नाली बनाई हुई थी और शहर को सूअर का बच्चा जो उल्टा हो गया। अब उल्टा हो नहीं सकता, नाली छोटी, उल्टा पड़ा है, पानी आ रहा है, अगर नाक में पानी आ जाए मर जाएगा। ऐसा विचार सूअर के बच्चे को मैंने निकाला, तो उस निकाल देने मेरी देरी हो गई। समय पर चला तो मैं ठीक समय से चला, ठीक समय पहुंच जाऊंगा, परंतु उसको निकाला। उसको अगर मैं न निकालता, समय पर आता, तो मेरे चित्त में वो खटखटी रहती कि बच्चे की क्या दशा हुई, बच्चा मर गया होगा, मर जाएगा, और वो दुख होता मेरे मन में। तो मैंने उसको निकाल दिया, उसमें देरी लगी, माफ करें। तो लोगों ने कहा, महाराज ये सेवा करने की सम्मति है, यही सभा है, तो सेवा में देरी हुई वो तो हमारे उद्देश्य की सिद्धि हुई, इस उद्देश्य से तो हमें सभा करी है, तो उसी उद्देश्य की सिद्धि में समय लग गया, तो माफी क्या बात है। कहते मैं सेवा दृष्टि से नहीं करी, मैं तो मेरे चित्त की पीड़ा दूर करने के लिए किया, अगर मैं छोड़ कर आता तो मेरे चित्त में पीड़ा रहती, याद आती, बार बार दुख रहता, वो दुख दूर करने के लिए मैंने से वो बच्चे को निकाला। तो कहने का तात्पर्य कि दूसरे को सुख पहुंचाने की अभिलाषा होने से, दूसरे को दुखी देखने से अपने को दुख होता है, वो अपना दुख दूर करने के लिए दूसरों का दुख दूर करता है। जिसके दूसरे के दुख से दुख नहीं होता, वो साधु पुरुष नहीं है। वो स्वामी जी ने कहा है संतों के लक्षणों में कि पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, ये संत के लक्षण बताए, ये साधु के लक्षण है। वो चाहे गृहस्थ में हो, चाहे साधु आश्रम में हो, भाई हो चाहे बहन हो, सही कोई सही हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, दूसरे को सुखी देख कर वो सुखी होते हैं, दूसरे को दुखी के दुखी होते हैं। तो कहते महाराज ये तो लेने से लेना पड़ गया, अपना सुख दुख तो आदमी अलबत्ता दुख सह ले, दुख दूर कर ले, तो थोड़ा सुख दुख होता है। दुनिया के दुख से दुखी होगा तो दुखे तो सुखी है नहीं, इसका दुख तो मिटेगा ही नहीं। सुखी थोड़े मिलेंगे, दुखी आदमी ज्यादा मिलेंगे, सबका दुख दूर करने की सामर्थ्य नहीं, तो यदि सदा के लिए दुखी रहेगा वो तो फायदा क्या हुआ। हमारे दुख से दुखी है, हम दुनिया के दुख से दुखी है, तो हमारे दुख तो किस तरह से दूर हो सकता है, दुनिया का दुख दूर कैसे करेंगे हम। तो ये तो दुख मोल लेना है, ये फायदा क्या है, ऐसी बात नहीं है। दूसरे के दुख से दुखी होने वाला अधिक संग्रह नहीं कर सकता, वो जिद इकट्ठा कर नहीं सकता, क्योंकि दुखी मिलते रहेंगे तो उस सुख के लिए वितरण करता ही रहेगा, तो संग्रह की इच्छा मिट जाएगी। और दूसरे के दुख से दुखी होने से अपने जो सुख की सामग्री रुपए पैसे आदि है, वो सामग्री भी उसमें लगाता रहेगा, तो भोग और संग्रह ये दो इच्छा बांधने वाली है। भोग ही स्वर्य प्रसन्नता नाम तया बदलाम जब सजात्मा का बुद्धि समाध न विधीये, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, भोग नाम सुख भोगना, ऐश्वर्य नाम भोग सामग्री इकट्ठी करना, तो इकट्ठी करना सुख भोगता, ये दो जो इच्छा है, सुख भोग की इच्छा और संग्रह की इच्छा, ये दो रहेगा तो एक ही जिसमें रहेगी तो परमात्मा की प्राप्ति वो नहीं कर सकता, परमात्मा की अनन्य अभिलाषा उसकी जागृत होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं। ये भगवान ने 44वें श्लोक में कहा है, दूसरे अध्याय के 41 में से 44 तक चार श्लोक इस सकाम निष्काम का विभाग करने के लिए लिखा है। तो 44 में उपसंहार किया है, 41 में व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका, निश्चय वाली बुद्धि एक होती है, और बहुत साधारण बुद्धि अव्यवसाय एक निश्चय नहीं किया है, बहुत इच्छाएं होती है, एक एक इच्छा की पूर्ति के लिए अनेक शाखाएं होती है, तो शांति कभी मिलेगी ही नहीं। तो एक एक कब होती है, निश्चय परमात्मा की प्राप्ति करना है, अर्थात आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। आवश्यकता की पूर्ति मनुष्य ही कर सकता है, इसके पास में ही इच्छा और आवश्यकता के भेद समझने का विवेक है, और जोनियों में ये विवेक नहीं है। तो विवेक पूर्वक काम करेगा तो दूसरों के दुख दूर करने के इसके भीतर में ये इच्छा जग जाएगी, तो अपनी इच्छा मिट जाएगी। इस बात ये बड़ा सुगम उपाय है, कर्मयोग उसका नाम ही है, जो सेवा करना सबके सब सुखी कैसे हो जाए, ये मन से असली लालसा जागृत हो जाती है, तो उसकी सब चेष्टाएं सबको सुखी पहुंचाने के लिए हो गई। तो संग्रह और भोग दो जो है, भोग और ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, संग्रह करने की इच्छा है वो ऐश्वर्य की आसक्ति है, और सुख भोग की इच्छा है वो भोग ईश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, इनमें जिनकी आसक्ति है वो परमात्मा की प्राप्ति करने का निश्चय भी नहीं कर सकता, प्राप्ति दूर हुई कैसे करेगा। उसकी तो जो कुछ चेष्टा है इच्छा है भीतर की वो प्रबल हो रही है, संग्रह कर रहे सुख भोग रहे, संग्रह कर रहे सुख भोग रहे, यह रजोगुण प्रधान है मनुष्य। ऊर्ध्वगत संत सत्वस्था, मध्य दृष्ट राजसा और अधोगत संत तामसा, तो मध्य जो रागात्मक विद्य कृष्णा संग समुद्भव तन्य कर्म संगे देही रम, तो ये देही को बांधते हैं, तो अमृत इच्छा कामना लोभ प्रवृत्ति आरम्भ कर्म नाम असम और स्पृहा हृदयता जायते, तो मध्य मध्य लोग में रजोगुण प्रधान वाले आते हैं, इसमें लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा अस्मह श्रांति ये इनके रहती है, कर्मणाम आरंभ असमह अशांति ये इसके रहती है इच्छा। तो मनुष्य को सावधान होना चाहिए, जो अपना कल्याण चाहते हैं उन भाई बहनों को संग्रह की इच्छा और भोग इच्छा इसका त्याग करना है। संग्रह और भोग इतना दुखदायी नहीं है जितना संग्रह की इच्छा दुखदायी है, जन्म देने वाली है। साधारण रीति से शरीर निर्वाह करते हुए अनुकूल पदार्थों से सुख होता है वो भोग है, परंतु भोग बुद्धि से सुख भोगना है वो बड़ा अनर्थकारक है, और निर्वाह बुद्धि से खाना पीना पहनना सोना जगना अगर निर्वाह बुद्धि से करता है तो सारी रंग केवलं कर्म कुर्मन नापनोति किल्बिषम, सर्वान शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म करता है वो कर्म बंधता नहीं। ऐसे स्वभाव नियतं कर्म कुर्मन नापनोति किल्बिषम, स्वभाव के अनुसार जो वर्ण आश्रम के कर्म है जो भगवान ने आज्ञा दी है उसके अनुसार कर्म करता है तो बंधता नहीं। ये दो बार बात आई है, शारीरं केवलं कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम और स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करता रहे, निषिद्ध कर्म करे नहीं, और विहित कर्मों को भी भोगेच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करे, केवल हित के लिए ही, तो ते प्राप्त माने वह सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है अपने सुख की इच्छा नहीं है, तो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबके सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहे, ऐसी भीतर में इच्छा अभिलाषा हो जाती है तो अपनी कामना छूट जाती है। तो कामना के त्याग का ये बड़ा सुंदर अवसर है, और उपाय है। मनुष्य शरीर में अवसर है, दूसरे शरीरों में सेवा कर नहीं सकते, दूसरे शरीरों से सेवा ले लेते हैं, गाय है, भैंस है, भीड़ है, बकरी है, इनसे आप सेवा ले लेते हो, परंतु इनकी और वृक्ष आदि स्थावर की इनकी योग्यता नहीं कि सेवा करे। सेवा करने की योग्यता मनुष्य में है। मनुष्य में दो चीज खास है और वे चीज नहीं हो तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा एक तो, एक दूसरों को सुख पहुंचाने की इच्छा, ये दो चीज रहनी चाहिए। और सुख पहुंचाने की इच्छा सगुण की प्राप्ति और निर्गुण की प्राप्ति दोनों में सहायक है। बारहवें अध्याय में तो ते प्राप्ति मंत्री महामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहता है ते प्राप्ति मंत्री महामेव। पांचवा अध्याय में लभन दे ब्रह्म निर्माणम ऋषय क्षीण कर्म सा छेदात्मान सर्वभूत हिते रता। वह चौथा बारहवें का ही पच्चीसवा पांचवें का तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति चाहने वालों के लिए भी सर्वभूत हिते भाव लिखा है। और ते प्राप्ति मामेव सगुण को प्राप्ति कराने वालों के लिए भी चाहने वालों की सर्वभूत हिते रहता है। तो प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए आपकी। आप कितना उपकार कर सकते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने बल होगा, धन होगा, वस्तु जितनी होगा उसके अनुसार आप करोगे। जिसके पास ज्यादा वो ज्यादा करेगा, थोड़ा है तो थोड़ा करेगा, परंतु थोड़ा करने वाले का फल कम नहीं होगा। ज्यादा धनी आदमी ज्यादा सुख की इच्छा करे हरों को सेवा करने की तो वो ज्यादा कर सकता है। बल जिसमें शरीर में अधिक है वो खट करके परिश्रम कर सेवा कर सकता है। सेवा करने की दो ही चीज है, एक तो अपनी वस्तु दे करके सेवा करना, एक खट करके परिश्रम करके सेवा करना। तो वस्तु अधिक है वो अधिक सेवा करेगा, बल अधिक है तो अधिक खट कर परिश्रम करेगा, वस्तु कम है तो कम से सेवा करेगा, और जो बल कम है तो वो कम सेवा कर सकेगा। परंतु फल एक होगा बरोबर, लाखों रुपया जिसके पास है लाखों रुपया खर्च करने से उसी सेवा बनेगी, और मामूली चीज है उनसे अपने मामूली सेवा बनेगी। इसमें भी एक फर्क है, ज्यादा रुपयों वाला और ज्यादा शक्ति वाला ज्यादा सेवा कर सकता नहीं, उसमें ज्यादा सेवा करने की सामर्थ्य नहीं है। स्थूल रीति से तो दिखता है कि अधिक रुपयों वाला अधिक सेवा कर सकता है पर नहीं कर सकता। जैसे एक आदमी के पास पांच रुपये हैं और गाय मर रही है बिना चारे के, उसका चंदा हो रहा है, तो पांच रुपयों में से एक रुपया वो दे सकता है, परंतु सौ रुपयों में से बीस रुपया एक साथ नहीं दे सकता। लाख में बीस हजार देना बड़ा मुश्किल हो जाता है और पांच में एक रुपया देना बड़ा सुगम होता है। तो पांच वाला एक रुपया दे, सौ वाला बीस रुपया दे और लाख वाला बीस हजार दे, तो दिखने में जो बीस हजार अधिक दिखता है और सवा बीस दिखता है उसका एक रुपया दिखता है, पर एक रुपया का जितना पुण्य होगा इतना बीस रुपयों का और दस लाख रुपया हमारे बीस हजार देने पर उतना पुण्य नहीं होगा। यहाँ बड़े आश्चर्य है, वो बीस हजार दे देगा तो बहुतों को सुख पहुंचेगा, एक रुपये से कितना सुख पहुंचेगा। सुख पहुंचाने की बात नहीं है, देने वाले के भाव की और उसकी शक्ति है उसको देखना चाहिए। पांच रुपया में से एक रुपया देगा तो उसके खान पान में किराए आदि में तंगी भोगनी पड़ेगी। लाख रुपयों वाला बीस हजार देगा तो उस तंगी भोगनी नहीं पड़ेगी, खूब आराम से रह सकता है। अस्सी हजार अपने पास में है उसमें तंगी थोड़ी भोगनी पड़ेगी। तो 5 रुपए वाला 1 रुपया देता है, उसमें लखपति भी 15-20 रुपए पास में रखकर सब दे दे तो बरोबर हो तो हो सकता है, क्योंकि उसका आवश्यकता अधिक है, खर्चा अधिक होता है, तो वो खर्चे की शरीर निर्वाह की तंगी भोगता है, इसे बरोबर हो तो उसे बरोबर हो सकता है। इस वास्ते भाई बहनों के मन में ये तभी तब है जब तक ज्यादा पैसा आया नहीं है, ज्यादा पैसा आ जाए तो जयराम जी फिर नहीं खर्च कर सकोगे, फिर लोभ लग जाएगा, फिर चली होगी, तो थोड़ा धन दिया तो आपकी इच्छा ज्यादा होती है, तो भगवान तो नियत को देखते हैं, तो थोड़ा धन सोई शक्ति होने वाले का भाव जितना शुद्ध रहता है, अधिक शक्ति अधिक पैसा वाले का भाव शुद्ध नहीं रहता है। धनी आदमी के तो दृष्टि रहती है कि ये आदमी कैसा है, कहाँ धन खर्चे, तो उसको कुपात्र बहुत दिखते हैं, और कुपात्र देखने से खुद कुपात्र हो जाता है, चाहे कम है ज्यादा कुपात्र सुपात्र देखते ही नहीं, वो देखते भी जरूर से दे दो, उसकी ज्यादा नहीं होता, वो कहता है लोग आलसी हो जाएंगे, सेना कष्ट सेवा करेंगे तो आलसी हो जाएंगे, तो आलसी न हो, ये तुम्हारे ठेका है क्या, ईश्वर की तरफ से तुम्हें बताया है कि भाई आलसी मत होने देना, ये लोग पैसों का होता है तो कई तरह की शंका होती है, तो वो उतना धन खर्च कर नहीं सकता, धन का रहता तो है लोग ऊपर में कहता है ये दुर्वियोग होता है, ऐसे देने से आदमी खराब हो जाते हैं, ये मिठले हो जाते हैं, कमकश हो जाते हैं, ऐसी बातें होकर वो दूसरों को कुपात्र देखता खुद कुपात्र हो जाता है, दान देने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस वास्ते आप सब लोग हमारे पास शक्ति कम है तो आपकी कम सेवा से भी पूर्णता हो जाएगी, टैक्स अधिक होता है अधिक लगता है, अधिक रुपये वालों को कम लग रहे कम रुपये वालों को कम टैक्स लगता है, तो परमात्मा की तरफ से टैक्स आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा अधिक शक्ति वालों को, तो वे इतना कर नहीं सकते। तो मूल में बात मैं कह रहा था सर्वभूत हिते रता, दूसरों के सुख में हमारी प्रीति होनी चाहिए, प्रीति होने से दूसरे किसी ने भी भूखे को भोजन करा दिया तो दूर बैठा खुश हो जाएगा, ठीक है भाई हमारे पास तो अन्न था नहीं और जिसके पास अन्न उसने भोजन करा दिया बड़ा अच्छा है, तो उस प्रसन्नता से पुण्य हो जाएगा मुफ्त में, तो हमारे सामर्थ्य ने बड़ा अच्छा किया ऐसे, और धनी आदमी खर्च कर रहे हैं दुरुपयोग कर रहे हैं आदमियों को निचला बना रहे हैं, उनके ऐसा शुद्ध भाव होना कठिन है, सबकी मैं नहीं कहता हूँ, सबके स्वभाव बरोबर नहीं होते, अच्छे स्वभाव वाले धनी भी अच्छे होते हैं गरीब भी अच्छे होते हैं, तो स्वभाव अच्छा होना है ये अच्छापन है, धनी का अधिक होना अच्छापन नहीं है, ये तो हो जाएगी बात। जो बड़ नीचे सत्संग हो रहा था तो शेर जी ने कहा था मैं वहीं मौजूद था और भी आदि होंगे वहां, और कहा कि आप भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ अधिक धन मत देना हमारे को, अधिक पैसा मत देना हे नाथ, ऐसे प्रार्थना करो, अधिक पैसों वाले की बुद्धि एकदम कंजूस कृपण हो जाती है, तो वह देना मुश्किल हो जाता है, धन दिखता है उनमें से चला जाए, 1,00,000 रुपया अपने पास रोकड़ में होगा उसका बेघर भी काफी होगा, चीज वस्तु मकान आदि रोकड़ में 1,00,000 रुपये वाले के ज्यादा होता है, तो वो खर्च करने में बड़ी मुश्किल होती है, ये हमारे खर्चा है, इतना हमारा मकान है, इतने हमारे धन है, इतने गाय भैंस भेड़ बकरी, इतना हमारे घोड़ा, इतने मोटर, इतनी कितना खर्चा है, अधिक खर्चा कैसे करें, ऐसी चिंता रहती है, और लड़के कहीं 1,00,000 रुपयों में से 2,000-4,000-5,000 भी लगा दे तो चिढ़ता है, अरे मूर्खो मूल में से खर्च करते हो, कमाओ खर्च कर दो, मूल में से खर्च करते हो तो मूल के क्या थोड़े लगाओगे नोटों के, मूल में क्या करोगे, खर्च करने काम आते नहीं, जैसे कर्जदार आदमी दुख पाता है ऐसे मूल में से 5,000 खर्च हो तो दुख पाता, जब तक पूर्ति नहीं तो संतोष नहीं, नींद उड़ जाती है, यह दशा होती है, तो वो क्या खर्च करेगा बेचारा, इस वास्ते कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है वो दरिद्री है, उस धनवान को श्रीमस्त को यस्त समस्त तोषा, लक्ष्मीवान कौन है जिसके संतोष है, संतोष अमृतता नाम यम शांत चेतसाम, जिनके संतोष रूपी अमृत है शांत चेत है अपना, उनको जो सुख है कुतस्तद्धा नाम अतस्तेतस्त धावता, धनी आदमी को रात रात नींद पूरी नहीं आती, नींद लेने से दोनों कानों के पास में टेलीफोन पड़े हेलो हेलो हो रहा है, नींद कब ले बेचारा, दिन में वक्त पर रोटी नहीं खा सकते, समय पर सो नहीं सकते, इतनी चिंता होती है, उनका मुख देखो तो बड़ा उदास होता है, और जिसके पास उसने शांति मौज से मौज करता है। एक बात याद आ गई, एक सेठ थे धनी, उसे बड़ी हवेली ऊंचा मकान बढ़िया, पास में एक स्त्री पुरुष रहते थे छप्पर में, फूस का छप्पर उसमें रहते थे, अब दोनों मजदूरी पर जाते कमा लाते और अच्छा चलो भोजन बनता बढ़िया, सीरा पूरी गुलगुला बनते भैया खाते थे आराम से। जब उस गरीब की स्त्री और सेठानी की बात हुई तो कहते हमारे ऐसा भोजन बना, आज ऐसे बना ऐसे बना, तो सेठानी ने विचार किया हमारे से ऐसा भोजन नहीं बनता, हमारे तो बहुत रुपए हैं, फिर भी भोजन तो मामूली बनता है, ज्यादा बने तो पापड़ सेक लो, नहीं तो पलवार पड़े हुए फजा सेक लो, कैरिया सेक लो, बस बढ़िया हो गया, तो बढ़िया भोजन बनता ही है। सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसने सेठ से पूछा कि हमारे ये पास में पड़ोस में रहते हैं हमारे नीचे मकान छप्पर, वे तो खीरा गुलगुला खाते खूब मौज से अच्छी तरह से, अपने बन जाते बस रोटी बना दो साग बना दो बस और क्या पापड़ सेक लो, क्या बात है ये। तो सेठ बोले कि ये तेरे को पता नहीं है, एक ननाना का चक्र होता है, संस्कृति पुस्तक थी हम पढ़ते थे तब, उस नवनवत चक्र में से देखा है, नवनवत चक्र होता है, निन्यानवे का चक्र हो गया, वो निन्यानवे की गाली लगी नहीं है इनके, तब तो ये है, वो लग जा तो फिर देखो, कि मैं तो समझी नहीं वो क्या चक्र होता है। तो बोला निन्यानवे रुपया ला, एक कम 100 रुपया लिया, उसका दे दिया, रात्रि ने एक गठरी में बांध करके रात्रि ने आंगन में फेंक दिया, सूर्य कभी क्या पड़ा सफेद सफेद, तो लाए तो भारी भारी, खोला तो उसमें गिनती करने लगे 20 20 20 20, चार चार बीसी होगा, पांच बीसी में 1 रुपया कम थी, 5 बीसी 100 200 कम आता में 20 गिनते, 4 बीसी 5 बीसी 6 बीसी, तो 5 बीसी में 1 रुपया कम रहा, तो यदि 1 रुपया 5 बीसी पूरी हो जाए फिर बात तो ठीक है, तो अपने रोटी जा कमाते हैं खाते हैं थोड़ा सा बचाओ तो ये पूरी हो जाए, पूरा 5 बीसी हो जाए, तो उसमें कमी होने लगी, तो संकोच करा 2 4 दिन 1 रुपया हो गया, वो भर्ती कर दिया, तो विचार में आया इतने ने खाया क्या फायदा, बताओ वो शरीर वैसे ऐसा रहा, अब ज्यादा नहीं खाते तो रुपया संग्रह हो जाते, और देखो 1 रुपया हो गए 5 बीसी पूरे हो गए, अब महाराज वो करने लगे संग्रह, संग्रह करने लगे तो अब साग रोटी बने रहे, कभी रोटी तो बना दे मिर्चा पीस दे अपने, और उनसे रोटी खाने लगे, साग बनाने में खर्च होता है, मिर्ची पीसी खा ली खूब से। कुछ 1 2 महीने के बाद में सेठानी से कहा अब तुम बात करो उनके क्या भोजन बनता है, बात करी कि भोजन क्या है, साग रोटी बन रही है दाल रोटी बन जाती है, साग रोटी बना दो साग खर्च होता था, हम तो मिर्ची पीस लेते हैं और खा नमक डाला पीसी मिर्ची और रोटी खाई सब खा लेते हैं, तो क्या है ये 99 का चक्कर है, तो बड़ों के बड़ों के 99 का चक्कर लगा हुआ है, वो बेचारे सुख से रोटी नहीं खा सकते, सुख से सैर नहीं सकते, वो डरते रहते हैं खर्चा हो जाएगा खर्चा हो जाएगा, अरे है ही नहीं खर्चा क्या हो, हम डरते ही नहीं कि हमारा खर्चा हो जाएगा जयराम जी की क्या हो जाएगा, हिसाब करना ही नहीं पड़ता खर्चा होता ही नहीं, खर्चा हो तो आपको होता है। देखो भाई कहने में संकोच होता है, आप लोगों के एक मुनीम होता है एक खजाना होता, हमारे सब मुनीम है सबके खर्चा जहाँ भूख लगे वहां के ले आए सब ले आए खा लिया अपन मौज से। आप लोग कमाओ दुख भोगो मौज में हम मौज करें। आप लोग समझते हो हमारी मोटर है बढ़िया, हमारी तो वो हमारी बढ़िया मोटर है वो आप पर चढ़ी जाती है, मोटर पर हम चढ़ते हैं, हमारे पर मोटर नहीं चढ़ती और आप पर मोटर चढ़ी जाती है। विलेज में खड़े तो आप पर मोटर चलो तो आपके मोटर कहीं लग जाते नहीं क्या करते हैं? मोटर खराब हो जाएगी आपको चिंता, हमारी चिंता ही नहीं। हमारे काम पर एक बार आ रहे थे नागौर स्टेशन पर जा रहे थे, मुंड में से चले नागौर के बीच में मोटी मोटर होगी खराब, तो हमने अपने पुष्पी के बैगम तो स्टेशन में चले गए, अब खराब होगी वो सोचो हम क्यों तो मोटर पर तो हम चढ़ते हैं तुम्हारे पर मोटर चढ़ती है, बोलो धनी आप हो हमें। ये तो बात है भाई, और दूसरी बात नहीं है आप धन के काम से अभिमान करते हो, हमारे अभिमान में हम थोड़े कम थी है। आसाम में गए थे तो वो डूंग जी थे लोहिया, वो रायबाजू से वो तिनसुखिया में ज्यादा जमीन उनकी बाजार में जमीन, अब तो दर नहीं रही इतनी जमीन थी बहुत रायबाजू से बड़े घरी आदमी थे। तो एक सत्संगी मोटर पर चढ़ा था, हम भी चढ़े हुए थे, तो उन्होंने एक मोटर ठहराई उसको उतार दिया, उतार दिया नहीं उतर गया क्यों उतर गए वो तो उतार दिया क्यों इसको, ये भी सत्संग करने वाले हम भी सत्संग है ये सत्संग करने वाले इनको उतार दिया क्यों, मैं उतर गया फिर चलेंगे इसको चलाओ फिर चलेंगे। फिर मैं बोला हाँ वो याद आ गई मेरे को, आप देखते हो हमारे पास धन है हम बड़े धनी है तो आपके अभिमान है, अभिमान में हम कम नहीं है, हमारे पास धन नहीं है यही अभिमान है अभिमान में कम धो रही आओ इसमें तो बरोबर है, तेरे घर में शेरी सिंह मेरे घर में पागो नाथ हो तो नाथ कर दू खड़ा सब में आगो ऐसी बात है ना। तो वास्तव में तो विनोद की बात है, विनोद करते थोड़ा विनोद हो जाए, पर बात यह है कि लोभ जब मन में होता है तो वहां ना साधु सुखी होता है ना ग्रस्त सुखी होता है, ना बहना सुखी होती है ना भाई सुखी होते हैं। अरे काम और क्रोध और लोभ छूट जाए ऐसे ही विमुक्त काम से तमो द्वारे शिविर मरा, इन तमो द्वार जो तीन है इनसे छूटता आचर भी आत्मन से आचरती अपना कल्याण का आचरण करता है तो परम गति प्राप्त हो जाता है। तो ये त्यागना है भाई, धनी को भी लोभ का त्याग करना है, निर्धन को भी लोभ का त्याग करना है, लोभ सबको सताता है धनी को भी धन को भी, लोभ भी इसमें होता है दरिद्रता होती है हमारा इतना हो जाए इतना हो जाए इतना हो जाए ये तो लोभ का त्याग करें। तो व्यवसाय आदमी को बुद्धि समाधान न दे दीजिए भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होते उस परमात्मा के निश्चय की बुद्धि नहीं होती, ये जो इच्छा इसका नाम इच्छा है और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा इसका नाम जिज्ञासा है प्रेम पिपासा है, वो इच्छा कामना नहीं है वो जीव के उद्धार की है। तो सत्संग में जाने की इच्छा भजन ध्यान करने की इच्छा शास्त्रों के मर्म को ठीक तरह से जानने की इच्छा ये इच्छा नहीं है, ये वास्तव में जिज्ञासा है प्रेम पिपासा कह दो, प्रेम की भगवान का प्रेम कैसे हो, भगवान में स्नेह कैसे हो, भगवान का चिंतन कैसे हो, जप हमारा कैसे हो, निरंतर भगवान का चिंतन कैसे हो, ये इच्छा निहाल कर देती है और वो पतन कर देती है जो भोगों की और संग्रह की इच्छा होती है। भोग और संग्रह तो भाग्य से मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं। इच्छा करके मुफ्त में दुख पाते हैं, और जो मिलने वाला है वो इच्छा करने से भी मिल जाता है और इच्छा नहीं करने से मिल जाती है। वो चीज नहीं मिलने वाली है, कितनी इच्छा करो मिलेगी नहीं, और नहीं इच्छा करो तो नहीं मिलेगी, इच्छा करो तो नहीं मिलेगी। और मिलने वाला जो विधान है भगवान का, वो आपकी इच्छा के अधीन नहीं है, पूरी पूरी कर्मों के अनुसार भगवान की मर्जी से बना हुआ प्रावध है, उसके अनुसार मिलेगा, तो क्यों इच्छा करे भाई। प्रारंभ पहले रहता है पीछे रहता है शरीर, तो उसे चिंता क्यों करे भजने से, वो भी भगवान का भजन करूं। निर्वाह तो जब शरीर दिया है परमात्मा ने, तो इसके निर्वाह की सामग्री भी दी है। आप जो आयु तुम क्या है पंचायत गर्भ गर्भ में रहता तभी ये हो जाती है, इतनी उम्र होगी, इतना धन होगा, इतना सुख होता है, दुख होगा, ये अनुकूल परिस्थिति आवेगी, प्रतिकूल आवेगी, वो तो आती है, वो तो आवेगी। धनियों के आई है, गरीबों के भी आई है। ये जब देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, वहाँ लोगों को खरीदा, जिसमें एक गिलास के 5 रुपया पानी मिलता नहीं, पासे मर रहे हैं, 5 रुपये में एक गिलास मिले, ऐसी ऐसी आफत धनी आदमियों में आएगी, गरीबों में आएगी, वो तो सब में आती है भाई। रोग हो जाता है तो डॉक्टर मरण देते हैं, अस्वभाव है आम ऐसो, अस्वभाव है आम ऐसो, पेट जरो जर पी, वैद्य डॉक्टर बदल नहीं पी बढ़े, नीर पानी पीन बनी, पानी पी से जरो जर हो गया, पेट में पानी पानी हो गया, पानी मत पियो, प्यास से मर रहे हैं, लाखों करोड़ जन पास में पर प्यास नहीं बुझा के पानी नहीं पी सकते, ऐसे अन्न नहीं खा सकते तुम, फल नहीं खा सकते तुम, ऐसे हो जाता क्या करोगे बताओ। लक्ष्मी पास होने से सुख भोग लोगे, शक्ति नष्ट हो जाएगी, भोगों की इच्छा रह जाएगी, बड़ा काला दिन, नीचा दिन, बड़ा आफत का दिन है, भोग सामग्री सामने है पर भोग से भी शक्ति नहीं है, रोता है बेचारे क्या करे क्या करे बताओ, तो ऐसा दुख होता है। वो त्याग होता है तो शक्ति रहते हुए भी हमें भोगना नहीं है, नहीं भोगना तो जबरदस्ती थोड़ी है, सुख से मौज से रह सकते है, धन होने पर भी मौज है, न धन होने पर भी मौज है, और राग द्वेष है, लोभ है, तृष्णा है, तो हमारा धन होने पर भी दुख है, धन न होने पर भी दुख है, तो वास्तव में तो ताम आशाम सुखम, आशा का त्याग करने से सुख है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा बन जाए इतना मिलेगा, काम सब देगा, ये काम में ही हो जाए, मैं ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, काम अथत सुख स्वप्ने होना ही। गोस्वामी जी कहते हैं कामना जब तक मन में रहेगी तब स्वप्ने सुख नहीं, स्वप्न में सुख नहीं मिलेगा, भीतर में इच्छा है, आग लग रही है, तृष्णा रूपी भीतर में आग जल रही है, अब आग शांत कहाँ से हो, नागभूष चतुर्थी काष्ठा नाम नापगा नाम महोदधि, काष्ठ कितने ही डालो अग्नि शांत कैसे हो जाएगी, काष्ठ रख दो और सहता सहता हीट घी डाल दो अग्नि भड़केगी, ऐसे इच्छा के अनुसार पदार्थ भोग मिलते रहेंगे तो संग्रह की और भोग की इच्छा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लाय लग जाएगी भाई। ये जो सब जानते हैं और सबसे ठीक समझ है, थोड़ा सा विचार नहीं करते, कई कई ऐसे भाई बहन देखा गृहस्थों में रहते हुए अपने काम कर लेते हैं और खाने पीने जितना काम हो गया फिर भजन स्मरण ज्यादा लग जाते हैं, फिर कमी जैसे छोड़ फिर उद्योग करके कुछ पैदा कर लिया फिर भजन में लगे हुए, इस तरह से भाई बहन होते हैं, आप सब हो सकते हैं, अगर आप हैं ही तो मेरे को पता नहीं भी कौन कैसा है, पर ऐसा होना चाहिए, हो गया तो बड़ी अच्छी है, नहीं तो ऐसा होना चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए प्राग बढ़ता गया है, आप काम करो कैसे हो जाएगा। एक सज्जन थे कलकत्ता में मिले थे, वो कहते मेरी स्त्री थी बीमार, एक लड़की हुई, वो लड़की बीमार, बकरी का दूध चाहिए, तो बकरी का दूध भी कलकत्ते में कठिन, गाय का भैंस का तो मिल जाए, तो उसके लिए हमारे परिश्रम करना पड़ता, रुपये लगाता, तो स्त्री का पालन करता, बच्ची का पालन करता, हमारा भी दलाली करते थे, उन्होंने खुद कहा अब स्त्री मर गई, बच्ची मर गई, अब एक हम रह गए, तो हमारे निर्वाह के लिए दलाली उतनी पैदा होती है, अगर वो है तो उनके सब खर्चे के लिए उसमें दलाली से पैदा होती है, दलाली वो कही वो दिन भर वो ही आवश्यकता से पैदा होती है। एक आदमी मिले, वो क्या है, मैंने एक व्यापार किया, उनमें रुपये मिले, तो लड़की की शादी की तो आना पाई सहित वो ज्यादा मिले, उतना उतना खर्चा कर गया, तो आवश्यकता हो जाते हैं। यहाँ देवी देवी कटने वाले रहते थे, यहाँ बड़ के पास में, वे कहते थे भाई दूध की बंदी की हुई है, तो वो जाते रोजाना अपना जितना दूध ले आते, उस दिन एक दिन पहुंचे तो क्योंकि आज आग से दूध ज्यादा हो गया गाय का, तो हम कैसा दे दो, पैसा दे देंगे तुम्हारे को, ले आए तो यहाँ कच्ची कुटिया पर पहुंचे तो एक आदमी के हमारे आग से दूध की जरूरत है, चले जाओ भाई, तो वे कहते थे कितना माप तोल है भगवान के, यहाँ हमें आवश्यकता देखी तो वहां गाय के दूध ज्यादा हो गया, ये भगवान का विधान है, तो आवश्यकता के अनुसार चीज पैदा होती है, इनको भरोसा नहीं, इन भाई बहनों को गर्भपात करोगे, ऑपरेशन करा लोगे, नसबंदी करो, पालेंगे कैसे, एक आदमी 30-30, 40-40 रुपया खेत में काम करने वाले मथानी में क्या हमारे 40 रुपया रोजाना देते नित्य प्रति 40 रुपया, अब 40 रुपया अन्न खा लेगा वो तो क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, चिंता तो करती तुम्हारी बुद्धि को खा गई मौत, तो बुद्धि स्मरण नहीं है, काम करने वाले 100 रुपया 150 रुपया 125 रुपया एक दिन में 200 300 400 400 रुपया एक एक दिन में ऐसा पैदा करते हैं, खाएंगे क्या, चिंता करते हैं, आश्चर्य आता है मेरे को, लोग बेकाम आ जाते हैं, हमारी ये बहना छोकरिया यही मानती नहीं, ये कहते हैं क्या करें, ज्यादा चंद जाएंगे तो बड़ा दुख होगा, कैसे पालन करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे ब्याह करेंगे, वे हम लोग भी पैदा हुए हो, आप लोग भी पैदा हुए थे पहले, बूढ़े बड़े बैठे हैं तो कैसे पालन करते थे, अरे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वृक्ष ज्यादा होने से वर्षा ज्यादा होती है, तो मनुष्य ज्यादा होने से क्या अनाज पैदा ज्यादा नहीं होगा, अभी मछली खाओ और अंडा खाओ और पशुओं को मार खाओ, मांस का विचार कर रहे हैं, शेर दो शेर का अनाज मिलता है, नहीं तो मिलकर 10-12 शेर गेहूँ मिलते हैं, हमारे देखा है उसी तरह से एक रुपये गए, तो ये जो जंतुओं को मारते हैं, खेती में जंतुओं को मारते हैं, पहले मारते नहीं थे, टीली आती थी 3 वर्षों से एक बार, तो जिस वक्त में टीली आती उससे जमाना अच्छा होता था, तो टीलियों का पालन हो जाता हमारे ही पालन हो जाता है, अब काल पड़ते हैं, क्यों काल पड़ते हैं, कि पशुओं के लिए घास की जरूरत नहीं, पशुओं को तुम खा जाओगे, अगर तुम्हारे अन्न की जरूरत नहीं, पशु काम आ जाएंगे, तो दोनों खा लो आपस में, जरूरत क्या है घास की, क्या जरूरत है अन्न की, इस बात से अन्न कम पैदा होता है, काल पड़ा कड़ी बार ही बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, मरेगा ही ऐसा कर्म करे उनको तो दुर्दशा होगी, पहले से कहता तुम गर्भपात मत करो, तुम संतति निरोध मत करो, हिंदुस्तान है इसमें महाराज विदेशी कर्जा देते हैं, कर्जा इतना हो गया है कि हिंदुस्तान बिक जाए तो कर्जा नहीं उतरेगा, इतना कर्जा हो गया है, कर्जे लेने वाले समय में उनको लिखना पड़ता है कि हम नसबंदी करेंगे, गर्भ गिराएंगे, संतान पैदा नहीं करेंगे, ऐसा लिखना पड़ता है, क्योंकि वे कर्जा देने वाले जानते हैं कि ये प्रजा घट जाएगी, कर्जा अधिक हो जाए तो हमारा राज्य हो जाएगा, और ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा राज्य नहीं होगा, उसी वशीभूत होकर राज्य नसबंदी करते हैं, किसने प्रजा बढ़े नहीं, क्योंकि लिखना पड़ता है कर्जा लेने वालों को, वे कहते हैं तुम ऐसा करो तो कभी करेंगे ऐसा, इस वास्ते प्रजा को घटा रहे हैं, विदेशियों में जहाँ पर ये संतति निरोध का प्रचार था वे समझ गए, अपने सोचने लगे रहे संत जाएगा बड़ी सुबह सो जाएगा, हमारे से रहेगा नहीं। अब उसमें राज्य की तरफ से गृहस्थों के लिए लड़के होते उतने कमरे नए बना देते हैं कि अलग अलग कमरों में रहो, संतान पैदा करो, नहीं तो दशा क्या होगी, वंश नष्ट हो जाएगा। ऐसे वो राज्य की तरफ से सहायता मिलती है, जिसके ज्यादा संतान होते उसको पुरस्कार दिया जाता है, उसकी सहायता करते है। विदेशों में इस बात को जान गए, हमारे यहाँ जानते नहीं, बहने नहीं जानते, भाई नहीं मानते, बहनों नहीं मानती, जबरदस्ती महाराज ऑपरेशन करा दिया, जबरदस्ती गर्भ गिरा देते है। ऐसा शास्त्रों प्रायश्चित इसका है नहीं, ऐसा ऐसा घोर पाप करती है, राज्य करती है, छोरियों के जवान जवान दे दी, वर्ष गिराओ वर्ष गिराओ गर्भ गिराओ, राम 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 राम, क्या करे, धूम लगी है शास्त्र में ऐसी। तुम्हारा संख्या नष्ट करने के लिए विदेशियों ने उपाय सोचा है और आप उसमें सहायता कर रहे हो, हिन्दुस्तान का नाश करने के लिए, कितनी बात है। हम कह रहे इच्छा का त्याग करो, भोगेच्छा का त्याग करो, संग त्याग करो, अब भोगेच्छा इतनी बढ़ गई कि अब क्या करेंगे, अभी संतान हो जाएगा तो बहनों भाइयों संयम रखो, शरीर अच्छा रहेगा, संतान जरूरी है, दूना पाप क्यों करो, भोगेच्छा को बढ़ाओ और संतों को मिटाओ और गर्भपात करो, क्यों ऐसा पाप अन्याय करते हो, कृपा करो अन्दाता, आप हमारे पर कृपा करो, पर नो ने काम की इच्छा है भोगता है तो इच्छा और होती है, आवश्यकता और होती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कहावत है, आपके संतान ज्यादा होगी, आवश्यकता होगी तो अन्न पैदा हो जाएगा, अधिक होगा, जो जो संतान घटा होगी क्यों जो आवश्यकता है जैसे अन्न के जीवन पैदा होगा, ये बात है। तो ये दो चीज समझ लेगी, आवश्यकता और होती है, इच्छा एक और होती है, आवश्यकता की भी इच्छा होती है, इच्छा की भी इच्छा होती है, दोनों का ही होता है, तो दोनों का भेद समझने से बड़े लाभ होता है। नारायण नारायण।